और आप सबको आशा है कुछ संशय दूर हुए होंगे। दरअसल भक्ति रसामृत सिंधु का उद्देश्य यही है। भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? रूप गोस्वामी ने दिया है कि हम कैसे भक्ति करें और भक्ति में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको कैसे दूर करें, संशय कैसे दूर करें। तो इसीलिए छोटी छोटी चीजों को भी दूर करना जरूरी है। तो हमें अच्छा लगा आप सबके जो कल जिज्ञासाएं थी, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, तब भक्ति रसामृत सिंधु का उपयोग होगा कि प्रैक्टिकली भी हम लोग सब चीजें सीख लें जो हम लोग भक्ति में करते हैं। इसलिए बहुत, जैसे हम लोग देखें कि कई सरल चीजें दी गई, हम लोग को लगता भक्ति रसामृत सिंधु बहुत कठिन ग्रंथ है, समझ नहीं आएगा, पता नहीं क्या क्या दिया है रूप गोस्वामी ने। कितना सरल है, चरणामृत पीना है, प्रसाद लेना है, भगवान की सेवा करनी है, यही सब दिया है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इसको तो सबसे पहले पढ़ाना चाहिए भक्ति शास्त्र। अगली बार से ऐसा करेंगे, जहां भी पढ़ाएंगे पहले इसको पढ़ाएंगे। तो सबसे सरल है, लोगों को अच्छा लगेगा कि अरे ये तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उसको ठीक तरह से और करने के लिए ये ग्रंथ है। तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी प्रसाद ग्रहण करने की, जहां पर अंत हुआ था ये नौवे अध्याय में, और एक दो और अंग इसमें हैं, फिर हम लोग आगे दसवें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो अब इसमें हम लोग, अगला था चरणामृत का पान करना। तो चरणामृत का पान करना चाहिए, यहाँ पुराणों से, पद्म पुराण से लिखा गया है कि जिस व्यक्ति ने कभी दान नहीं दिया, यज्ञ नहीं किया, वेदों का अध्ययन नहीं किया, ईश्वर की पूजा नहीं की, अर्थात कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, अगर मंदिर में रखे चरणामृत का पान कर लेता है तो भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। चरणामृत में बहुत शक्ति होती है, तो इसीलिए चरणामृत रोज ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत मतलब जब भगवान का अभिषेक किया जाता है सुगंधित जल से, पुष्पों से, जब भगवान का अभिषेक हो जाए तो उस जल को चरणामृत कहते हैं, उसको ग्रहण करना चाहिए। भगवान का रोज अभिषेक होना चाहिए, इसका अर्थ ये है, तभी तो चरणामृत होगा, नहीं तो चरणामृत कहाँ से होगा। तो इसलिए आप सबको घर में प्रयास करना चाहिए, और नहीं होता है तो जितने समय भी करते हैं उस दिन चरणामृत ले लेना चाहिए। ज्यादातर हम लोग देखते हैं बाहर के जगत में भी, जो भक्ति में नहीं भी है वो भी, और कई कई मंदिरों में भी देखा जाता है कि चरणामृत लेते समय वो एक श्लोक को कहते हैं। आप सबको ये श्लोक बड़ी अच्छी तरह से पता होगा, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम हम। ये आप लोगों ने सुना है, ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। तो ये जनरली जब चरणामृत लेते हैं, विष्णु पादोदकम मतलब विष्णु के चरणों से जो जल आया, चरणामृत विष्णु पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम हम, चरणामृत जब चरणामृत लिया जाता है तो फिर उसको ऐसे सर पर धारण किया जाता है, शिरसा धारयाम हम ये बोलते हैं। और जो ये किसके लिए है, विष्णु पादोदकम पीत्वा, भगवान विष्णु के चरणों से निकला हुआ जल। लेकिन हम लोग तो राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो फिर उनके लिए क्या कहना चाहिए, उनके लिए अलग मंत्र है, उन्हें कहना चाहिए राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति दामोदा भक्ति भावेन वै पीत्वा शिरसा धारयाम हम। ये राधा कृष्ण के भक्तों को ये मंत्र, जब भगवान के राधा कृष्ण के चरण कमलों का हो तो राधा कृष्ण पादोदकम पीत्वा। और फिर हम लोग तो चैतन्य महाप्रभु की भी पूजा करते हैं, तो फिर उनके चरणों से निकले तब क्या कहना चाहिए, आशेष क्लेश निहेश कारणम शुद्ध भक्तिदम गौर पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम हम। तो गौरांग महाप्रभु के चरणामृत को लेते समय इस श्लोक को कहना चाहिए, जिसका अर्थ क्या है, अशेष क्लेश निहेश, जितने भी क्लेश हो सकते हैं कोई शेष नहीं रहेंगे, सारे क्लेशों का नाश होगा, कारणम शुद्ध भक्तिदम, और ये जो चरणामृत है ये क्या है, कारणम शुद्ध भक्ति, इदम शुद्ध भक्ति का कारण है। इसीलिए गौर पादोदकम पीत्वा, भगवान गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों से निकला हुआ जल पीत्वा पीकर और शिरसा धारया, हम सिर पर उसको धारण कर रहे हैं। वैसे ये चरणामृत का महत्व है, इसको हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे वर्णन है कि अर्च विग्रह पर चढ़ाए हुए फूलों को तथा अगुरु को सूंघना। तो ये हम लोग करते हैं, आप देखते भगवान की आरती होती है, फिर उनको फूल अर्पण किए जाते हैं, फिर सबके पास आते हैं। अभी कोरोना काल में तो रोक दिया गया है कि कहीं फैले नहीं, लेकिन ऐसे आते हैं सब लोग, उसको सूंघते हैं और फिर अगुरु भगवान को सुगंध अर्पित किया जाता है। आप लोग देखते हैं आकर आपको हाथ में लगाते हैं ये सब गंध, तो ये भी सूंघना चाहिए भगवान का, जब गंध लगे उसको सूंघना चाहिए। तो ये नियम है, क्या होता है उससे, ये यहाँ पर हरि भक्ति सुधोदय में दिया गया है कि अगर अर्च विग्रह पर चढ़ाए गए अगुरु और की सुगंध को सूंघते हैं तो उसी प्रकार भौतिक कलमश के विषैले प्रभावों से विमुक्त हो जाते हैं, जिस तरह एक विशेष जड़ी बूटी को सूंघने से सर्पदंश अच्छा हो जाता है। किसी को सांप ने काट लिया है तो उसके कई इलाज है, मंत्र है उसका एक इलाज है, या फिर उसको निकाल देना एक इलाज है, और एक इलाज है कि एक जड़ी बूटी आती है, वो जो दक्ष लोग हैं निपुण लोग हैं उनको पता होता है, तो उसको सुंघा देंगे तो फिर वो चला जाता है, वो सर्पदंश का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए ये भी हमें करना चाहिए कि किस तरह उसको सूंघने से जो काल रूपी सर्प हमें डस चुका है उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, अर्थात हम भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये सूंघने का महत्व है, और भी तंत्र शास्त्र इत्यादि से दिया गया है सूंघने का महत्व, कि यदि मंदिर के अर्च विग्रह को भेंट की गई माला की सुगंध किसी के नथुनों में प्रवेश करती है तो पाप कर्मों का बंधन तुरंत कट जाता है, दूर हो जाता है। और साथ ही साथ भागवत से हम लोग जानते हैं कि भगवान के चरणों में अर्पण पुष्प तुलसी का केवल सुगंध लेने से शुद्ध भक्ति प्रकट होती है, जैसे चार कुमारों को भी, चार कुमार जब गए भगवान के दर्शन किए, उन्होंने श्राप दे दिया था जय विजय को, भगवान आए तो वर्णन है कि जैसे ही उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी के दल को सूंघा, सुगंध ली उसकी, तो वो एकदम शुद्ध भक्ति उनके हृदय में आती। तो इसीलिए हमें ये रोज सूंघना चाहिए। अगला वर्णन है अर्च विग्रह का स्पर्श करना चाहिए, तो अर्थात उनकी सेवा करनी चाहिए। स्पर्श कब करेंगे, जब उनकी सेवा करेंगे, उनको अभिषेक कराएंगे, उनको श्रृंगार कराएंगे, तब फिर उनको स्पर्श करेंगे। तो इसलिए स्पर्श करना चाहिए अर्थात उनकी सेवा में लगना चाहिए। जो वैष्णव के रूप में दीक्षित हैं और कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करता है उसे ही अर्च विग्रह की शरीर को स्पर्श करने का अधिकार है। तो क्यों है ऐसा, ऐसा नहीं कि जन्म से कोई ब्राह्मण है, कोई किसी और कुल में है तो उसको अधिकार है, बिल्कुल नहीं। यहाँ अधिकार किसको है, जो भी वैष्णव रूप में दीक्षित हो गया, कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति कर रहा है उसको अधिकार है। जैसे यहाँ लिख रहे, पहले प्रथा थी ना कि कई लोगों को मंदिर आने नहीं दिया जाता था, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, जो भी किसी भी कुल में जन्मा हो लेकिन अगर वो भक्ति के मार्ग के द्वारा शुद्ध हो रहा है तो फिर वो भगवान के विग्रह की सेवा कर सकता है। अर्च विग्रह का दर्शन करना, वराह पुराण में लिखा है कि हे वसुंधरा, जो व्यक्ति वृंदावन जाता है और वहां गोविंद देव के अर्च विग्रह का दर्शन करता है तो यह यमराज के दरबार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्ग लोक में प्रवेश कर सकता है। तो जो भी वृंदावन जाता है और गोविंद देव के दर्शन करता है, हम जा रहे हैं शनिवार को, आप सबकी तरफ से दर्शन करने के लिए हमें इच्छा नहीं है, आप सबके लिए, आप सबके प्रतिनिधि के रूप में दर्शन कर लेंगे और आप सबको लाभ हो जाए। आरती तथा उत्सवों को देखना, तो आरती के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख का दर्शन करता है तो लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है, यहां तक कि ब्राह्मण हत्या या अन्य वर्जित कर्मों से देवियों से क्षमा कर दिया जाता है। भारत के कई स्थानों में, कई राज्यों में और कई जातियों में, धर्मों में ये प्रथा है कि अगर वो मंदिर जाते हैं और भगवान की आरती हो रही है तो वो ना तो बैठते हैं और ना बाहर जाते हैं छोड़कर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम लोग बड़े एडवांस हो गए हैं इस्कॉन, तो भगवान की आरती हो रही हो तो भी हम लोग चले जाते हैं, सेवा हो तो बात अलग है। लेकिन हमने देखा कई स्थानों पर नियम है कि अगर आरती हो रही है तो कभी छोड़कर नहीं जाते, मतलब वो खड़े रहेंगे जब तक पूरी आरती नहीं हो जाए, शंख नहीं बज जाए तब तक नहीं। तो ये करना चाहिए कि जब भी आरती में जाएं हम लोग तो आरती में पूरा भाग लेना चाहिए, भगवान के आरती और उत्सवों को देखना चाहिए। उत्सवों का वर्णन और आगे भी आएगा तब करेंगे। तो ऐसे ही नवे अध्याय में जो कल रह गए थे कुछ शेष, उसका वर्णन हुआ। अब दसवां अध्याय प्रारंभ करते हैं। दसवें अध्याय में जो 64 अंग पहले दिए हैं उनमें से 43 से लेकर 46 तक के वर्णन है। ऐसे एक एक अध्याय में उनके प्रमाण दिए जा रहे हैं, करीब 12-13 अध्याय तक ही प्रमाण ही दिख जाए। तो 43 से लेकर 46 तक के प्रमाण इस अध्याय में दिए गए। तो सबसे पहला वर्णन कर रहे हैं श्रवण का, हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है श्रवण। तो श्रवण का वर्णन किया है प्रभुपाद, लिखते हैं कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का शुभारंभ सुनने से होता है। तो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भक्ति का प्रारंभ ही उससे होता है, जिस संस्कृत में श्रवणम कहा जाता है। तो ये श्रवणम कौन कौन से प्रकार के होते हैं? ये श्रवणम नाम श्रवण हो सकता है, चरित श्रवण हो सकता है, गुण श्रवण हो सकता है। तो भगवान के नाम का श्रवण, भगवान के चरित्र अर्थात भगवान की, भगवान जो कार्य करते हैं, और गुणादि मतलब उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का, तो भगवान के क्या क्या गुण हैं। जैसे हम लोग भगवान के जब गुणों के बारे में चर्चा करते हैं तो कौन भगवान, कैसे हैं, पूर्ण शुद्ध हैं, नित्य मुक्त हैं, तो ये सब चीजें भगवान के बारे में वर्णन होती है। तो भगवान के गुणों को सुनना ये एक श्रवण है, भगवान के नाम का श्रवण और भगवान के चरित्र। तो नाम चरित्र गुणादि इनका श्रवण करना चाहिए। तो इससे क्या प्रभाव होता है? जब हम भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं या उसका श्रवण करते हैं, तो जैसे सांप के काटे हुए व्यक्ति को मंत्र के द्वारा पुनः चेतना में लाया जा सकता है। अगर किसी को सांप ने काट दिया, बेहोश पड़ा है, मंत्र के द्वारा वो आ जाता है। इसी तरह हम सब, प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि जैसे भौतिक जगत में बद्ध जीवन की दशा कैसी है, जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेत पड़े व्यक्ति की। तो दोनों अचेत अवस्थाएं मंत्र ध्वनि से समाप्त की जा सकती हैं। तो इस जगत में जो व्यक्ति आया है वह भी सो रहा, ऐसा कहा जाता है कि वो सो रहा है। क्यों सो रहा है कहा गया है? क्योंकि वो दो चीजों को नहीं जानता है, अपने कर्तव्य को और ईश्वर के साथ अपने संबंध, इन दो चीजों से अनभिज्ञ है, ज्ञान नहीं है उसे, इसीलिए सो रहा है। जब हम सोते हैं तो हमें ज्ञान नहीं रहता है। क्या ज्ञान नहीं रहता है? हम सो रहे हैं, हमें क्या कर्तव्य है हमारा, उसका ज्ञान नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि सोते सोते व्यक्ति भी पूरा अपना कार्य करता रहता है, सब भूल जाता है। और क्या संबंध है? घर में ही सो रहा है लेकिन थोड़ी उसको याद रहता है कि ये मेरे सोते समय कुछ नहीं पता होता कौन मेरे संबंधी है क्या है। तो जब उठता है तब पता चलता, अच्छा ये मेरे, सोता रहता नहीं होता। तो जगत में सोने का अर्थ है दो चीजों से अनभिज्ञ रहना, दो चीजों को ना जानना, भगवान से अपने संबंध को और अपने कर्तव्य। तो जब हम कर्तव्य को समझ लेते हैं या भगवान से संबंध को समझ लेते हैं तब कर्तव्य करते हैं। तो कर्तव्य क्या है हमारा? कर्तव्य हमारा केवल परिवार चलाना, धन कमाना, थोड़ा बहुत इस जगत में मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना, आनंद लेना और मर जाना नहीं है। हमारा कर्तव्य है कृष्ण की भक्ति, आत्म साक्षात्कार, ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य। जो इससे अनभिज्ञ है वो सब सोए, और जो अपने संबंध से अनभिज्ञ है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, वो सोए हुए। तो मंत्र के द्वारा जब हम श्रवण करते हैं तो मंत्र के द्वारा उसको पुनः जागृत किया जाता है। तो नाम श्रवण होता है और फिर चरित, भगवान की कथा आदि का श्रवण। तो उसके लिए कहा गया है कि मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहां बड़े बड़े आचार्यगण भगवान की दिव्य लीलाओं पर प्रवचन कर रहे हों, और ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा को कर्णेन्द्रियों द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ऐसी दिव्य ध्वनि को उत्सुकता पूर्वक सुनता रहता है तो वह भौतिक भूख, प्यास, शोक, भय, असंसारिक माया मोह से निश्चित मुक्त हो जाता है केवल श्रवण से। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषाप। भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। क्या क्या लाभ होता है यहाँ पर दिया, सब जितने भी बंधन है उनसे मुक्त हो जाता है निश्चय सांसारिक माया मोह से, सारे कलमश दूर हो जाते हैं। तब कथा अमृतम दत्त जीवनम, और जितनी ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां किसे कहते, गांठे, हमने जीवन में गांठे बढ़ा रखी हैं, ग्रंथियां, और वो हमारे हृदय में है, आसक्ति के रूप में, धन से आसक्ति, स्त्री से आसक्ति, संतान से आसक्ति, मान प्रतिष्ठा से आसक्ति, सारी गांठे बांधते जाते हैं रोज हम लोग। इसीलिए भागवत में कहा गया, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। अगर कथा में रति है तो वो सारी गांठे कट सकती, छिन्दन्ति, काट देता है, क्योंकि भगवान की कथा तलवार की तरह, तो कोई भी गांठ क्यों ना हो तलवार से काटी जा सकती। तो इसीलिए ये तलवार हमें चाहिए। तो यहाँ ये दूसरा वर्णन है, पहला वर्णन प्रभुपाद ने किया नाम श्रवण का, अब यहाँ वर्णन है भगवान के चरित कथा श्रवण का इत्यादि, आगे गुणों के श्रवण का है। लेकिन साथ साथ एक चेतावनी भी प्रभुपाद देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में आत्म साक्षात्कार के साधन रूप में श्रवण विधि को संस्कृत किया, श्रवण करो आत्म साक्षात्कार होगा। लेकिन पेशेवर वाचकों से श्रवण करने से काम नहीं चलेगा, इसको लिखते हैं प्रभुपाद, पेशेवर वाचकों से काम नहीं चले। आप लोगों ने कभी कराई है कि नहीं पेशेवर वाचकों से कथाएं, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, उसमें आते हैं, उनका पहले से फिक्स होता है ये कथा बड़ी बढ़िया कथा करते हैं, अच्छा कितना लेते हैं, ज्यादा नहीं 15 लाख में लेते हैं केवल, बाकी उनके अनुयायियों का लेते हैं, 1-2 करोड़ में हो जाती है कथा, अच्छा चलो कथा। तो जो लोग धन लेकर कथा करते हैं वो पेशेवर कहलाते हैं, उनका काम ही यही है कि कथा से वो अपना जीवन चलाते हैं। अच्छा कोई कह सकता है क्या कथा से जीवन चलाना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन कथा को पेशा बनाना गलत है। पहले के समय में भी ब्राह्मण कथा किया करते थे, वो जिस कथा करते थे लोग स्वेच्छा से उनको कुछ दे देते थे, ठीक है नहीं दे तो भी क्यों, वो आनंद में है, वो उसको कथा कहते। तो उनके लिए ये नहीं था कि जाने से पहले सारे उनके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कीजिए तब वो जाएंगे तब कथा करेंगे। और ऐसे कथाकार यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि ऐसे कथाकार बड़े हम लोगों को भी बड़े अच्छे लगते हैं ना सुनने में, बड़े संगीतमय मधुरमय कथा होती, आजकल तो लोग एडवर्टाइज ही करते हैं, भागवत कथा कम एडवर्टाइज होता है, संगीतमय कथा, मतलब लोग सुनने भी वही जा रहे हैं कि हाँ भाई खाली जाकर ऐसा ना हो कि 1.5 घंटा 1.5 घंटा जैसे इस्कॉन वाले करते हैं बेकार में, बस बोलना शुरू करते रुकते ही नहीं है, तो ये नहीं, संगीतमय कथा होनी चाहिए, थोड़ा आनंद आए, थोड़ा इधर उधर के भजन हो। अभी हम कल परसों एक व्यक्ति से मिलने गए थे, तो हम प्रयास कर रहे हैं बनाने का, तो बता रहे थे कि पहली बार जब इस्कॉन वाले उनके घर में आए तो उन्होंने लोगों को बुलाया था आसपास के अपने मित्रों को, अपने जान पहचान वालों को, संबंधियों को, क्या हो जरा भजन है, कीर्तन भजन कीर्तन, सब आए। तो वो कह रहे थे कि थोड़ी देर हो गई कीर्तन शुरू होकर, तो जो हमारे संबंधी है वो इनको आके कहने लगे कि अरे ये लोग तो और कुछ गा ही नहीं रहे, ये हरे कृष्णा ही करे जा रहे हैं, भजन कहाँ है। तो अब ये भी नए थे, ये कह रहे थे कि हमें भी नहीं पता, तो हमने भी उनसे कहा कि आप कहो इनको कि रोके, तो वो बोले थोड़ा सा संकोचवश कह नहीं रहे थे। फिर जब और दो तीन लोगों ने बोला कि अरे इनको कुछ तो बोलो, ये तो शुरू से अब तक हरे कृष्णा ही करे जा रहे हैं, ये कुछ और कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि थोड़े और कुछ भजन हो, कुछ आनंद आए। तो ये जो यहाँ पेशेवर वाचकों की बात है, तो उनसे सुनने से क्यों नहीं चलता है, क्योंकि उनके सुनने से हृदय शुद्ध नहीं होता। यदि हम प्रभुपाद लिखते वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से श्रवण करें तो हमारे कानों के भीतर वैसे ही सुधा धारा प्रवाहित होगी जैसे चंद्र लोक से बह रही है अमृत की धारा। लेकिन अगर हम पेशेवर से सुनते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि कब खत्म करूं और कब मेरे अकाउंट में पैसा आए, जाऊं और फिर दूसरी कथा करूं। उसको कोई रुचि नहीं है कि आपका हृदय बदल रहा है कि नहीं, आपके अंदर भक्ति आ रही है कि नहीं। उसमें रुचि ये है कि मैं कितनी अच्छी तरह से प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे मेरा नाम बढ़ रहा है कि नहीं। लोग ये सोचें कि हाँ ये फला फला, ताकि इनमें से कोई बैठा हो और वो आके कहे स्वामी जी हमारे हमें भी कथा करानी, चलो और एक हो गया। तो जो पेशेवर हैं वो आपको भक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि स्वयं उनके हृदय में भक्ति। इसीलिए हमें सुनना चाहिए भगवान के भक्तों से शुद्ध कथा। हाँ, ये मानना कभी कभी हमारे इस्कॉन के भक्तों में भी ये हो जाता है कि हमें इस्कॉन के बाहर कोई भक्त है ही नहीं, तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा अहंकार है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस्कॉन के बाहर कोई भक्त नहीं है, एक इस्कॉन ही भक्ति दे रहा है। हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हमने जिस पथ को लिया वो एकदम सही है और इसी पथ से हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, वो इस्कॉन है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहर कोई हाँ, अगर कोई पेशेवर है धन लेकर कर रहा है, निश्चित वो भक्ति नहीं दे सकता, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कि हो सकते हैं कोई भक्त अन्य संप्रदाय के हों, क्योंकि संप्रदाय में हों, तो कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग फिर भी नहीं सुनते हैं। अब ये बात आती है, एक तरफ है कि हम कह रहे हैं कि वो लोग भक्त नहीं है, ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए, और ये सही है। अगर हम ये कहेंगे कि केवल भक्त इस कान में है, कितना अहंकार हो जाएगा हमें। क्या बाकी लोगों की हम निंदा करें? इतने सारे प्रमाणिक संप्रदाय हैं, इतने बड़े बड़े भक्त हैं, हम कैसे निंदा कर सकते हैं? लेकिन फिर हमें भी क्या जाकर अलग 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 सुनते रहना चाहिए? इसका अर्थ तो ये है कि उनको जाके पूछे भाई आप पैसा तो नहीं ले रहे ना, बोले नहीं नहीं, अच्छा ठीक है फिर सुनेंगे आप। तो क्या ये नहीं, हम क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि जैसे एक पत्नी होती है, उसका अपने पति के प्रति सतीत्व का भाव होता है। ऐसा नहीं है कि वो बाकी सारे पतियों का अपमान करती रहती है, तुम्हारा पति बेकार, तुम्हारा पति बेकार, नहीं, आदर सबका करती है, लेकिन शरण अपने पति की रहती है, शरणागत अपने पति को होती है। इसी तरह हमें आदर सबका करना है, लेकिन हम श्रवण पर अपने इस्कॉन संस्था में करते हैं। इसका पहला कारण इस सतीत्व का भाव। दूसरा कारण, कभी कभी पथ अलग होते हैं, तो अगर हम यहां भी सुनते हैं वहां भी सुनते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, बस इतना ही है। ये नहीं कहना चाहिए कि वो भक्त नहीं है, ये कहना चाहिए कि अगर एक तरह से चलते हैं तो हमारे मन में, वो बोलने वालों के मन में कोई भ्रम नहीं है, वो एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन हमारे मन में भ्रम हो जाता है, क्योंकि हम उस पथ पर नहीं चल, दो पथों को हम एक साथ नहीं चल सकते। जो भगवान के महान भक्त हैं, वो सारे पथों को, जो प्रमाणिक पथ हैं, उनको लेकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान है। लेकिन हमारी अवस्था में हमें पथ पर चलना, तो कभी हम इससे सुनेंगे, कभी उनसे सुनेंगे, तो फिर भ्रम में आ जाएंगे कि कैसे भक्ति करनी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने साक्षात्कार के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी परंपरा में प्राप्त जो भी उनको भक्ति मिली है उसके अनुसार क्या है, तो वो ठीक है, लेकिन हमारे अंदर भ्रम उत्पन्न हो सकता है। तो पहला कारण, हम बाहर नहीं सुनते हैं, ये हम बार बार बता रहे हैं, क्योंकि कई भक्तों के मन में ये आता है कि बाहर वाले कोई भक्त नहीं, उनसे नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम नहीं सुनते हैं क्योंकि हम परंपरा के प्रति सतित्व का भाव रखते हैं, और परंपरा के प्रति सतित्व का भाव कृष्ण को प्रसन्न करता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु, अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान वर्णन नहीं करते, वो कहते किसी से भी ले लो ज्ञान। तो भगवान परंपरा के प्रति सतित्व के भाव में विश्वास रखते हैं, तो इसलिए पहला कारण। दूसरा कारण, भ्रम में ना आ जाए। एक ने ये पथ बताया, एक ने ये पथ बताया, तो कैसे करेंगे, वो नहीं करते। तीसरी चीज, हर स्थान काल के अनुसार अलग अलग आचार्य अलग अलग लोगों की रुचि के अनुसार नहीं, लोगों की भक्ति ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार ज्ञान देते हैं। हो सकता है 100 साल पहले किसी बहुत विशिष्ट भक्त ने कोई ज्ञान दिया हो, लेकिन उसको आज अगर हम सुनते हैं तो फिर हो सकता है हम उसको समझ नहीं पाए और भ्रम में हो जाए। जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, बड़े महान आचार्य हैं, लेकिन हम अगर उनके ग्रंथों को पढ़ने लगे, हो सकता है ना समझने के कारण भ्रम में आ जाए। उनमें लिखने में कोई त्रुटि नहीं है, उनमें भक्ति में कोई त्रुटि नहीं, हमारी समझ। इसीलिए जो बस वर्तमान आचार्य होते हैं वो उसी ज्ञान को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जैसे हम समझ सकें। इसीलिए हमें एक ही जगह पर रहकर सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने हम सबको ये कहा है कि हम सुने इस तरह। एक समय प्रभुपाद के पास कोई उनके शिष्य पे आए और उन्होंने कहा कि फला फला कोई किताब लेकर आए, प्रमाणिक, ऐसे नहीं कि कोई अप्रमाणिक, लेकिन किसी और उनके द्वारा लिखी हुई, पूर्व में किसी और ने लिखी। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद से, क्या हम इसको पढ़ सकते हैं? प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद ने कहा, मैंने इतना सब कुछ किया है, उसको समाप्त मत करो, मेरे किए गए कार्य को। क्योंकि जब हम इस्कॉन संस्था में रहकर पथ भ्रष्ट होंगे, इधर उधर सुनेंगे, इधर भी सुनेंगे, तो जो प्रभुपाद ने वही ज्ञान हमारे लिए ये समझ करके ये हम इस तरह समझ सकते हैं दिया है, हम उसको नाश कर देंगे। जो भी प्रभुपाद ने किया है उस कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो इसीलिए हमें यहीं पर सुनना चाहिए। तो प्रयास ये हो कि हम बाहर का ना सुने, लेकिन कभी भी किसी की निंदा नहीं करें। हमारे भक्तों में विशेष करके भावना आ जाती है और वे बाहर की निंदा करते हैं कि प्रभुपाद ही केवल एक भक्त है और कोई भक्त नहीं। ऐसी निंदा नहीं, प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा। आपने कहीं प्रभुपाद का स्टेटमेंट हो तो हमें लाकर दिखाइए कि जहां प्रभुपाद कहें कि केवल मैं ही अकेला भक्त हूं। हाँ, प्रभुपाद ने यह जरूर कहा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस्कॉन का जो उन्होंने शुरू किया था कि केवल यही सही ज्ञान दे रहा है, क्योंकि उस समय ऐसे लोग इतना गलत प्रचार कर रहे थे। कोई मायावाद का प्रचार करता था, कोई कहता था कि आप ही भगवान हो, कोई कहता था आवश्यकता नहीं है भगवान की, आत्मा का अस्तित्व नहीं है। तो प्रभुपाद का केवल हम दे रहे हैं सही ज्ञान, क्योंकि हम भगवत गीता को एज इट इज प्रस्तुत कर रहे, बाकी सब ने भगवत गीता को तोड़ मरोड़ दिया। तो इसका अर्थ ये नहीं था कि प्रभुपाद ने ये कहा कि कोई और भक्त नहीं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण की कथाओं को हम लोग ऐसे स्थान पर सुने जहां से हमें जीवन में लाभ हो, अर्थात इस्कॉन संस्था को ना छोड़ें श्रवण के लिए, पथ भ्रष्ट ना हो। अब आप लोग इतना श्रवण कर रहे हैं और अभी भक्ति शास्त्री भी आपका पूरा हो गया है, ये तो हमारी इच्छा थी आपके ऊपर अत्याचार करने की, इसीलिए हमने जबरदस्ती एक और क्लास रखवा दी, लेकिन आपका तो भक्ति शास्त्री पूरा हो चुका है। तो अब आपसे एक विनती है कि आपको ये एक असाइनमेंट दे रहे हैं, हो सके तो ये भक्ति शास्त्री की जो अभी जो हम लोग क्लास शनिवार को आखिरी क्लास होगी एनओडी की, भक्ति रसामृत सिंधु की, तो उस दिन तक आपको लिखना है। क्या लिखना है? आपको जो भी आपने इस चार ग्रंथों का अध्ययन किया, भगवत गीता का, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, या लाइन से कहते हैं जैसे आपने किया, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, भगवत गीता और भक्ति रसामृत, इन चार का आपने अध्ययन किया, आपको अपने शब्दों में इस अध्ययन के विषय में कहना है या आपको क्या लाभ हुआ इनसे। आप कोई कविता बना सकते हैं, आप कुछ अच्छा सा लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें, लेकिन आप लिखिए। और इसमें दो बातों की प्रमुखता होनी चाहिए। पहली, भक्तों के संग में पढ़ने से क्या लाभ हुआ, क्योंकि हो सकता है पहले भी पढ़ते होंगे, कभी अकेले में भी पढ़ते होंगे, शास्त्र करने से पहले भी आपने भगवद गीता पढ़ी होगी। भक्तों के संग में पढ़ने से क्या लाभ हुआ। और दूसरी चीज, ये बड़े सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ाया गया, श्लोक का कनेक्शन, ये चीज करना है, वो चीज करना है, तो ऐसे बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, नीति हम क्या कहते हैं सिस्टमैटिक को, बड़े नियमबद्ध तरीके से जो पढ़ा गया, तो उसका लाभ क्या हुआ। तो दो चीजों को इंक्लूड करना है आप। पहला, भक्तों के संग में पढ़ने का क्या लाभ हुआ, और दूसरा, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने का क्या लाभ हुआ। तो ये दोनों चीजों को लेकर, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे अलग अलग लिखना है कि हाँ भक्तों के संग में पढ़ने से ये हुआ, ये दोनों चीजें आनी चाहिए आप प्रेजेंटेशन। तो आप कोई कविता बनाइए, आप कोई एस्से लिखिए, आप जो भी आप कर सकते हैं उसको प्रस्तुत कीजिए। अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं तो कोई बहुत अच्छा चित्र बनाइए, उसको प्रस्तुत कीजिए। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, शनिवार को क्लास खत्म होने से पहले इसको आपको प्रस्तुत करना होगा, या हो सकता अगर समय नहीं हुआ तो एक एक्स्ट्रा क्लास उसके लिए कर देंगे, ताकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सबके क्या अनुभव हुए, ये श्रवण का लाभ, हम लोग श्रवण की बात कर रहे हैं इसलिए हमने ये कहा, श्रवण का लाभ हमें लेना चाहिए। ठीक है, सो आगे की वर्णन करें इससे पहले एक हाथ दिख रहा है, जानवी प्रिया माता जी कुछ कहना चाहते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न था, मतलब अभी पूछें या लास्ट में?
ऐसा होगा कि अगर लास्ट में पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रश्नों से शुरू हो जाता है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते।
ठीक ठीक, नो प्रॉब्लम।
लेकिन अगर ऐसा कोई प्रश्न है कि अगर अभी आपको नहीं पूछने दिया और आप सर पटक 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 जान दे देंगे
नहीं प्रभु जी, आई विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, थैंक यू।
ओके, सो आगे है, भगवत कृपा की आशा करना, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग ले रहे हैं कि भगवत कृपा की आशा करना। उसके प्रारंभ में ही प्रभुपाद बहुत प्रसिद्ध श्लोक का अनुवाद लिख रहे हैं, तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिः विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदायथा। तो इस श्लोक में दो चीजें बताई गई हैं, क्या होता है अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, और कैसे क्या करने से हम मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो दो चीजें बताई गई हैं। पहला, जब कष्ट हो जीवन में तो हम कृष्ण का स्मरण बढ़ा दें, तत्तेऽनुकम्पां कृष्ण, उसको कृष्ण की कृपा माने। तो पहली चीज है इस श्लोक के आधार पर, आप मुक्ति के अधिकारी होना चाहते हैं, जब जीवन में कष्ट आए, दुख आए, तो कृष्ण का ये समझ लें कि कृष्ण की कृपा है, मेरे कर्मों के अनुसार तो पता नहीं क्या क्या होना था, लेकिन कृष्ण ने बहुत थोड़ा करके मुझे दिया, तत्तेऽनुकम्पां, भगवान की कृपा। और दूसरी चीज, सदैव प्रणाम करें। कब? जब पाप के फल हमारे जीवन में कष्टों के रूप में आ रहे हैं, तो सदैव भगवान को प्रणाम करता रहे, तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात् नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय। तो ऐसी अवस्था में भी कष्ट हो रहे हो, दुख हो रहे हो, भगवान को प्रणाम करें, उसी प्रेम से, उसी श्रद्धा से, जब सुख में करता मुक्ति पद का अधिकारी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं इसके अनुवाद को, तो जो व्यक्ति आपके अहेतु की कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और अपने अंतस्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बन जाता है। बहुत सरल है मुक्ति, है ना। ये यहाँ पर कहा गया। तो भगवत कृपा की आशा हमें करनी चाहिए, कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी अवस्था में, सुख हो दुख हो, हम लोग साथ में हो हम लोग नहीं हो, कोई व्यक्ति हमारे साथ रहे को चले जाए, भगवान की कृपा की आशा नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। हम लोग देखते हैं हर्ष शोक, जब उसकी मृत्यु हो गई तो उस समय उनकी जो माता थी तो चित्रकेतु की पत्नी, तो वो रानी दोष देने लगी भगवान को कि ये विधाता, इनको पता नहीं है क्या करना है, पिता है और पुत्र की मृत्यु हो गई नवजात शिशु की, ये तो गलत है। ठीक है गलत है, लेकिन दोष भगवान को क्यों? तो इसीलिए हमें भगवत कृपा की हमेशा आशा पे रहना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद आगे लिखते हैं, जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, अब ये आप सबके लिए नहीं हमारे लिए है, जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, पहले वर्णन किया जो कर्म फल से मुक्त हो गया भक्ति में लग गया वो तो कोई तकलीफ ही नहीं, उसे जगत में जन्म लेना ही नहीं पड़ता, लेकिन फिर लिख रहे हैं जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता उसे चाहिए कि वह गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे भले ही कितने ही अवरोध क्यों ना आए। ये हमारे लिए लिखा है प्रभुपाद, जब ऐसे अवरोध आ जाएं तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्हें कृपा की आशा करनी चाहिए, यही एकमात्र सांत्वना है। यदि भक्त इस भावना से अपने दिन बिताता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित। तो किनके लिए कहा है प्रभुपाद ने, जिनके कर्म फलों से भी मुक्त नहीं हुए हैं, मतलब हमारे लिए, आपके लिए तो हम नहीं कह सकते, आप लोग तो बड़े ऊंचे स्तर पर हैं, लेकिन कभी आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिले जिनके कर्म फल मुक्त, जो कर्म फलों से मुक्त नहीं हुए, उनके विषय में आप ये सोच सकते हैं। तो क्या करना है, पहली चीज गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत के कार्य, तो केवल कृष्ण भावनामृत कर्म नहीं करने, गंभीरता पूर्वक करने हैं। हमने सोचा था अच्छा इस पे नहीं करेंगे, 13 अध्याय कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ये कुछ कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि आगे बोल देते हैं। यदि अगले बात से कुछ दादा चरण प्रभु आप म्यूट कर दिया करिए हमें जब हम बोलना शुरू कर, तो कम से कम
मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे भी, जैसे राघवानंद का भक्ति भाव भक्ति आएगी तो समय नहीं मिलेगा, वो चिंता है और लोग बहुत कंफ्यूज है उस बारे में।
राघवानंद का भक्ति
भाव भक्ति ये सब चीजों को समझना भी जरूरी है, या तो क्लास आ गए भले आप 10 दिन बाद दें वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, कंप्लीट होगा। दैट इज अ कॉन्टिन्यूइंग पॉइंट।
दो चीजें हैं, अगर आप कहें तो हम शनिवार तक पूरे 19 अध्याय कंप्लीट कर देते हैं, फिर ऐसे भी कुछ समझाएंगे नहीं ठीक से, लेकिन अगर समझाएं जितना हो जाए उतना कर लें, बाद में कभी भगवान ने अवसर दिया तो राघवानंद भक्ति भाव
ठीक
है आदेश।
नहीं नहीं ये ठीक है, आपका सेकंड डिटेल में जाए वो अच्छा है, भले बाद में क्लास और हो जाए 15 दिन बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन अगले हफ्ते इनका एग्जाम भी है वो आपको अनाउंस कर दूँ।
हाँ कर दिया अनाउंस।
ओके ठीक अनाउंस हो गया था। ओके सो अभी आप सबके थोड़े हृदय में ना उत्साह आ गया होगा, ओ एग्जाम आ रहा है कितनी अच्छी बात है। पता है आप सबको इतना आनंद आता है एग्जाम देने में, ये देखिए सबके चेहरों में प्रसन्नता आ गई, मैं नहीं पता किस चीज की प्रसन्नता है, लेकिन इतने प्रसन्न हो गए एग्जाम का नाम।
प्रभु जी माता जी का फोन आया, उनके पेट पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई थी।
और इस बार तो थोड़ा टफ भी दे रहे हैं एग्जाम, प्रयास कर रहे हैं हम, देखते हैं कि इतना टफ बना पाए, शब्द ही ऐसे उपयोग करेंगे आप शब्दों में ढूंढते रह जाओगे कहाँ लिखा, प्रयास कर रहे हैं बनाने का। ओके सो बहुत सारे शब्द आएंगे, साधक रूप सिद्ध रूप काम रूप, अभी हमने उनका सबका वर्णन नहीं किया, आगे बहुत। ओके सो इधर आ रहे हैं, थोड़ा आपको चिंता नहीं करी, बहुत सरल लिखा बहुत सरल। तो यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है, केवल कृष्ण भावनामृत के कार्य नहीं करने हैं, गंभीरता पूर्वक कर्म करना है। तो ये हम लोगों के लिए, इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं क्योंकि हमारे कर्म फल अभी तक पूर्णतया समाप्त नहीं हुए, हम लोग मुक्त नहीं हुए, तो इसलिए पहली चीज गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म कार्य करना, कितने ही अवरोध क्यों ना आए, और अवरोध आना निश्चित है। अगर अवरोध नहीं आ रहे मतलब आप भक्ति ठीक से नहीं कर, ये जान लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है भक्ति में, तो इसका अर्थ है कि भक्ति ठीक नहीं हो रही। प्रभुपाद कहते थे जब अपोजिशन है मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी अचानक सोचो मेरे घर में तो सब कुछ अच्छा है कि हमें भक्ति नहीं कर। अवरोध का मतलब ये नहीं कि घर में तकलीफ हो जाए, शरीर में बीमारी हो जाए, आपका बिजनेस लॉस हो जाए, ये जरूरी अवरोध नहीं है। बहुत सारे अवरोध हो सकते हैं। मन अवरोध दे सकता है, अहंकार अवरोध दे सकता है, मान प्रतिष्ठा की भावना अवरोध दे सकती है, और मन मुटाव हो सकता है, आपस में एक दूसरे से सहयोग नहीं हो सकता, सारे अवरोध हैं। तो अवरोध ये नहीं सोचना चाहिए करे मेरे जीवन में कोई अवरोध नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, तो क्या मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, कर रहे हैं। तो अवरोध जब आए, कितने ही अवरोध ना क्यों ना आ जाए, पहली चीज गंभीरता पूर्वक। गंभीरता का अर्थ क्या है? गंभीरता पूर्वक भक्ति करने का अर्थ क्या है? गंभीरता पूर्वक भक्ति करने का अर्थ है जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको कितने ध्यान से और कितने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। गंभीरता का अर्थ ये है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं। हम प्रचार कर रहे हैं, हम लोग कभी कभी अहंकार बढ़ाने के लिए प्रचार कर देते, मेरा बहुत कुछ दल हो जाना चाहिए, मैं गुरु बन जाऊं क्योंकि मेरे सारे शिष्य हों, फिर गुरु महाराज, फिर तो और सब शिष्यों को कहूं रोज आपको 10-10 शिष्य बनाने हैं, नहीं आना नहीं बिना उसके मेरे पास। अच्छा फिर ठीक है, तो फिर पता चला अरे एक महीने में गुरु जी के 1,000-10,000 शिष्य हो गए, 1,000 शिष्य हो गए, अब गुरु जी का ये सही, अब 10 की जगह 5 लाना रोज। तो ये नियम नहीं। तो इसीलिए गंभीरता का अर्थ है जो भी किया जाए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हम जब कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हम कृष्ण के दर्शन करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हम प्रचार करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हम भक्तों की सेवा करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इसको ये गंभीरता कहते हैं। और दूसरी चीज, हमारा भाव क्या हो, प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं लेकिन हमारा भाव हो कि हम बिल्कुल योग्य नहीं है, हमें भक्तों की सेवा मिल रही है। कितना आगे आएगा अभी एक विषय ये भी है कि भक्तों की सेवा करना दिव्य सेवा में है, आगे आएगा दिव्य भक्ति करने में, दिव्य सेवा में एक वर्णन है। हाँ, भक्तों की सेवा करना, आज तो उस तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे, तो भक्तों की सेवा करना और उसका महत्व क्या दिया गया आप जानते हैं, हम लोग खैर अगर उसमें पहुंच जाते तो अच्छा था। भक्तों की सेवा करना सफलता प्राप्त करने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग, जब हम लोग आएंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। तो इसीलिए यहां दूसरा गंभीरता मतलब जो भी कार्य करें उसको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। गंभीरता अपने आप को अयोग्य मानते हो, योग्य नहीं है कि अब मेरे तो 25 साल हो गए, मैं तो भक्ति शास्त्री सिखाता हूं, अब फिर मेरा तो कहना ही क्या, बिल्कुल नहीं, आज भी अयोग्यता है। प्रचारक की सबसे बड़ी योग्यता क्या है प्रचार करने की, कि वो समझे कि मेरी कोई योग्यता नहीं, नो क्वालिफिकेशन, तब वो प्रचार कर सकता है। जिस दिन वो ये सोच लेता है कि मेरे अंदर बहुत सी योग्यता है प्रचार करने की, वो प्रचार नहीं कर सकता। और अगर फिर भी किसी को थोड़ा सा अहंकार है कि मेरे अंदर योग्यता है, तो पहला स्कंद पढ़ ले, भागवतम का पहला अध्याय, जिसमें प्रभुपाद ने व्यास आसन पर बैठने के योग्यताओं को दिया है, कभी स्पर्श नहीं करेंगे व्यास आसन। इसीलिए कोई योग्यता नहीं है हमारी, ये मानकर हमें प्रचार करना चाहिए। तो गंभीरता होनी चाहिए कितने, और जब अवरोध आए तब क्या करना है, कृष्ण का चिंतन करना है और कृपा की आशा करनी है। तो तीन चीजें यहां पर अगर हम करें, हमारे कर्म फल खत्म नहीं हुए लेकिन तीन चीजें करें। पहली चीज गंभीरता से कृष्ण के कार्यों को, कृष्ण भक्ति के कार्यों को करें, सभी कार्यों को। दूसरा चीज जब अवरोध आए जीवन में तो कृष्ण का चिंतन करें, और तीसरी चीज सदैव उनकी कृपा पर आश्रित, यह आशा बनी रहे कि कृपा आएगी, एक दिन आएगी। आज मुझे शारीरिक कष्ट है, कृष्ण करेंगे। आज मुझे अन्य कष्ट है, कृष्ण करेंगे। आज मुझे मानसिक कष्ट है, कृष्ण करेंगे। देखिए भक्ति रसामृत सिंधु कितना मधुर ग्रंथ, अगर इन पर विस्तार से हो, हमने तो अब तक बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया क्योंकि ओवरव्यू है, लेकिन बहुत सी चीजों को चर्चा करनी चाहिए। खैर, ये वर्णन है भगवत कृपा की आशा का। अगला वर्णन स्मरण का है। तो ये यहां पर हम लोग देखते हैं, एक स्मरण दिया है और उसके बाद ध्यान दिया है। अगला चीज ध्यान है। तो मन में प्रश्न आता है कि स्मरण और ध्यान में क्या अंतर है। अगर आप अपना, वैसे तो आप लोग कभी ये बुक खोलते ही नहीं है घर पर, तो भी अभी अगर देखें तो जो स्मरण है और उसके बाद ध्यान है, तो स्मरण और ध्यान में क्या अंतर है? ध्यान करना ही तो स्मरण को कहते हैं, स्मरण करना, ध्यान करना। तो स्मरण और ध्यान में यहाँ क्या अंतर है? स्मरण है कृष्ण के विषय में साधारणतः सोचना, उसको स्मरण कहते हैं। और ध्यान क्या है? बड़ी गहराई से कुछ चीजों पर चिंतन और मनन करना, और वो क्या है? भगवान के रूप को, जैसे उसको रूप ध्यानम कहते हैं, भगवान के गुण पर, जिसको गुण ध्यानम कहते हैं, भगवान की कृपा पर या क्रीड़ा पर भगवान की, जिसको क्रीड़ा ध्यानम कहते हैं, और भगवान की सेवा पर, जिसको सेवा ध्यानम कहते हैं। तो इसीलिए ये स्मरण और ध्यान ये दो अलग अलग रखे गए हैं, क्योंकि आप लोग ये सोच सकते हैं अलग एक ही में मिक्स कर देते हैं, हमें पढ़ना कम पड़ता, मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि स्मरण और ध्यान दो अलग चीज है। बहुत स्पष्ट, स्मरण है भगवान का साधारण रूप में चिंतन करना, सोचना भगवान के विषय, और ध्यान है गहराई से भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान के सेवा, उस पर ध्यान करना, उसको ध्यान कहते हैं। तो यहां स्मरण का विधि दी गई है कि कैसे स्मरण होता है। तो अभी हम लोग थोड़े समय पहले एक और हमें ऐसे ही चीज स्मरण आई, ध्यान नहीं, स्मरण आई, कि अभी हमने आपको एक असाइनमेंट दिया है कि आपको पूरा जो अध्ययन आप करेंगे, कि आपने चार बुक का, उसको एक कविता के रूप में या जो भी आपको अच्छा लगा, और दो चीज और एक चीज हम सोचते हैं, क्योंकि ये जो हमने अभी चर्चा की बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब दुविधाएं आए, अवरोध आए, तो कैसे हम पार जाए। तो आप एक चीज और लिख सकते हो कि आपने जीवन में कभी ना कभी तो बाधाओं को फेस किया होगा, सामना किया होगा अवरोधों का भक्ति में। तो फिर आपको ये बताना है दो चीजें, अगेन इसमें छोटा सा लिखना, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा, कि जब बाधाएं आई और तब आपने दो चीजें क्या सीखा उससे और कैसे उसका सामना है। अगर आप लोग ये लिखेंगे और अन्य भक्तों के साथ जब शेयर करेंगे तो हो सकता है कुछ भक्तों को प्रेरणा मिले, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये स्मरण और ध्यान का वर्णन है। स्मरण का वर्णन करते हुए कहा गया है, भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बनते हैं। और ध्यान के लिए क्या वर्णन है? भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट सकता है। दुराचारी, ये दुराचारी शब्द कहीं सुना है आपने? और भगवद गीता में गलती से कहीं पर किसी को पता है कहीं पर आया था दुराचारी शब्द?
अपिचेत सुदुराचार,
अपिचेत सुदुराचार, वहां तो सुदुराचार आ गया। तो जो दुराचारी भी है वो भगवान का ध्यान करके प्राप्त कर सकता है। तो आगे ये प्रभुपाद इसमें पूरे एक कथा देते हैं ब्राह्मण की, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण से है, कि कैसे उसने ध्यान किया, भगवान का श्रृंगार किया, भगवान को खीर अर्पण की, फिर वो गर्म थी खीर, उसका हाथ जल गया छूकर देखने में। ये सुन देख कर भगवान विष्णु हंसने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्यों हंस रहे हैं भाई, क्या हुआ? तो भगवान ने कहा, अच्छा बताता हूँ। तो ब्राह्मण को बुला लिया और फिर सारी कथा बताई लक्ष्मी जी। अब जब बुला लिया ब्राह्मण को तो वापस तो नहीं भेजेंगे, तो फिर वो उनके साथ ही रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल ध्यान करने से उसने भगवान को प्राप्त किया। ठीक है, अब 11वां अध्याय है। हम प्रयास करते हैं कि 9:15 बजे तक जितना हो सके उतनी चर्चा कर लेंगे, फिर आप लोग प्रश्नोत्तर जो आपके हैं उसको कर सकते। तो पिछले अध्याय में 64 अंगों में से 46 अंगों तक का वर्णन हो गया, अब 47वें से लेकर 53 तक के अंगों का वर्णन इस 11वें अध्याय में दिया गया। तो 47 से 53 तक ऐसे 64 अंग होंगे, अगले में 64 पूरे हो जाएंगे अगले अध्याय में, 12वें अध्याय में यहाँ 64 अंगों का वर्णन। तो अब यहाँ वर्णन किया गया है कि दास्य भाव, दास्य रूप में भगवान की सेवा करना। तो इस जो वर्णन यहाँ प्रभुपाद कर रहे हैं, तो इसमें दो प्रकार के दास्य भाव का वर्णन है। एक वो जो वर्णाश्रम धर्म से आ सकते हैं और भगवान को अपने कर्म फलों को अर्पण करते हैं, ये दास्य भाव एक है जो भी भगवान को अर्पण करते हैं। और दूसरा दास्य भाव यहाँ वर्णन है भागवतों का, भक्त भागवत। तो वो क्या करते हैं, वो सीधे भगवान की सेवा करते हैं 9 अंगों में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि उसमें अर्पण करते हैं। तो ये शुद्ध भक्ति मानी जाती है और ऐसे लोगों को जीवन मुक्त कहते हैं, यहाँ प्रभुपाद इसको समझा रहे हैं। तो 9 अंग भक्ति के अभी आप लोग तो भक्ति शास्त्री कर चुके हैं, अब हमारा एक प्रश्न है कि आप में से किसी को 9 अंग क्या है बताने हैं भक्ति के, कौन बताएंगे, हाथ पर कीजिए। 9 अंग श्रवण कीर्तन इत्यादि। ओके, यहाँ से सीकर से नाम तो हमें समझ नहीं आ रहा, कमल कृष्ण लिखा है, जो भी नाम तो वो बताएंगे। ओके, आपको अनम्यूट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी हमारा प्रश्न पूरा नहीं हुआ, और उसमें जिन लोगों ने, जिन भक्तों ने अपना जीवन पूर्ण किया उसको भी आपको बताना है। तो 9 अंग और भक्तों ने कैसे जीवन पूर्ण किया, किस भक्त ने कौन से अंग को लेकर। माता जी बताइए प्लीज, समय व्यर्थ हो रहा है। यस,
वंदनम कीर्तनम स्मरण साख्यम दास्यम पार्थिवनम अर्चनम।
ओके, वेरी गुड, नाइस ट्राई, थैंक यू। ओके, और कौन बताएंगे, पूरे 9 अंग और उनके जिन भक्तों ने पूर्ण किया। इसीलिए श्लोक याद करना चाहिए, इनका नाम हमें नहीं पता, माता जी जिन्होंने अभी बताया था, तो श्लोक याद कीजिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बड़ा सरल है ना। ओके, कौन बताएंगे, स्मिता राधिका माता जी। यस, कैमरे की तरफ देखिए तो हमें पता रहे कि आप बता रहे हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
हरे कृष्ण।
श्रवण कीर्तनम,
वो इसका एक रूल ये भी है कि आपका चेहरा घूमना नहीं चाहिए, बस एकदम शांत। अब बताइए,
श्रवण कीर्तनम स्मरणम श्रवणम कीर्तनम वंदनम अर्चनम वंदनम पाद, सॉरी प्रभु जी गड़बड़ हो गया, श्रवणम,
जैसे हमने लाइन से नहीं पूछा जैसे भी बता दें,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम दास्यम साख्यम और आत्मनिवेदनम।
इनका एक भक्त का नाम बताइए किस।
श्रवण में परीक्षित महाराज, कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी, स्मरणम में
देख लीजिए नीचे,
नहीं नहीं प्रभु जी लिखा हुआ नहीं है लिखा हुआ नहीं है स्मरणम में प्रहलाद महाराज और पाद सेवनम में लक्ष्मी और अर्चनम में पृथु महाराज, वंदनम में अक्रूर जी और दास्यम में हनुमान जी, साख्यम में अर्जुन और आत्मनिवेदन में बलि महाराज।
आत्मनिवेदन में बलि महाराज, और सारे नौ अंग किसने किए?
क्या प्रभु जी?
सारे नौ अंग किसने किए?
महाराज अम्बरीश।
अम्बरीश, आप लोग सही में भक्ति शास्त्री हो गए हैं, अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं, हम बंद कर देते हैं, सब एक्सपर्ट हैं आप लोग। ओके, सो ऐसे यहाँ पर वर्णन किया गया है दास्य भाव का, तो दो प्रकार के वर्णन हुए हैं इसमें, वर्णाश्रम धर्म में मतलब जो लोग फलों को अर्पण करते हैं, और भगवत भागवत जो होते हैं वो नौ अंगों के द्वारा सीधे सेवा करते हैं। जगदीशानंद प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, माता जी ने कहा तो उनके कैसे पीछे रहे। यस प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी बोलने वाला था, बोल दिया तो मैं छोड़ देता हूँ।
आपको तो आदत होगी ना इस चीज की, कि आपको बोलने का अवसर ही कहाँ मिलता है वैसे। तो ठीक है, आगे चलते हैं। सख्य भक्ति, ये रिकॉर्ड मत करना गौरांग प्रिय प्रभु, कहीं पब्लिक में चला जाएगा तो जगदीशानंद प्रभु हमारी
पब्लिक सब जानती है, नहीं हो रही है ना, पब्लिक सब जानती है।
पब्लिक ये जानती है कि सभी लोग एक ही बोट में हैं, आप भी हंसिए नहीं ज्यादा, आपका भी यही हाल है राइट।
आपने आपने सबको देखा हुआ है प्रभु जी।
ओके, सख्य भक्ति नेक्स्ट दिया गया है। तो पहले दिया गया दास्य भाव, फिर सख्य। यहाँ सख्य भक्ति के दो प्रकार दिए हैं प्रभुपाद ने, एक विश्वास पात्र जिसमें शुभ चिंतक भी आते हैं, और दूसरे मित्र। तो यहाँ ये कहा गया सख्य भक्ति पहले पर्व है जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह किया जाए, और जिसमें भगवान के शुभ चिंतक। तो ये दो तरह के कैसे हैं विश्वास में, पहले में भगवान की कृपा या भगवान के आशीर्वाद में श्रद्धा होती है, जैसे द्रौपदी, द्रौपदी भी भगवान की सखा कही जाती है, सख्य भाव में है, लेकिन वो कैसे है, वो इस तरह है कि जहां भगवान के कृपा पर, भगवान के आशीर्वाद पर विश्वास होता है। और दूसरे प्रकार है शुभ चिंतक, वेल विशर, वो कौन है, कृष्ण भावनामृत के प्रचारक, वो भी सख्य भाव में है लेकिन शुभ चिंतक, वो प्रचार कर रहे हैं कृष्ण का। और फिर आगे मित्र का वर्णन हुआ है, मित्र कौन है, मित्र ये थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई अवस्था है, ये हम लोग जब रागनों का भक्ति करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति का चर्चा करेंगे तब थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ये मित्र का वर्णन किया गया है कि वो भगवान के विग्रह की भी सेवा वो सख्य भाव में कर सकते हैं। एक उदाहरण अंत में दिया है इसमें, वो आगे की भक्ति का वर्णन। फिर अगला है आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन और शरणागत होना, ये दो चीजें अलग अलग दी गई हैं। आप लोग अगर इसी अध्याय में देखें तो यहाँ पर आत्मनिवेदन का वर्णन है, फिर उसके बाद प्रिय वस्तु अर्पित करना, कृष्ण के लिए चेष्टाएं करना और शरणागत होना। तो आत्मनिवेदन और शरणागत इसमें क्या अंतर है, कौन बताएंगे? ये अलग अलग क्यों लिखे, एक ही लिखना था, विकार में पेज भर गया। आत्मनिवेदन और शरणागत होना क्या अंतर है बताइए। अच्छा निकुंज राधा माता जी आप बताओ। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी।
आवाज आ रही है? हाँ, आत्मनिवेदन मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया थोड़ी थोड़ी समय पहले आपने, अम्बरीश आत्मनिवेदन बलि महाराज थे, तो आत्म शरणागत में ये अंतर है, शरणागत और आत्मनिवेदन में ये अंतर है कि शरणागत होते हैं हम, जैसे हम, मैं शरणागत हूँ तो पूरी तरह से हम शरणागत नहीं होते, और आत्मनिवेदन मतलब पूर्ण रूप से शरणागत होना।
ओ, इसको क्या हो गया? एक सेकंड,
आ रही है आवाज?
नहीं ये चला
गया। हरी बोल।
हरी बोल। आ रही, आ रही
आवाज, आ रही है प्रभु जी?
आ रही है माता जी, आ रही है आवाज, आ रही।
शरणागत जैसे हम, मैं शरणागत हूँ पर पूरी तरह से हम शरणागत नहीं होते, आत्मनिवेदन मतलब पूर्ण रूप से शरणागत।
ओके, और कोई? आत्मनिवेदन मतलब पूर्ण रूप से शरणागत, और शरणागत मतलब
क्लियर है, कभी कभी डामाडोल हो जाती हूँ।
अच्छा, तो शरणागति मतलब डामाडोल होना और पूर्ण
आत्मनिर्भरता।
मतलब ये कहना चाह रही है माता जी, उन्होंने आत्मसमर्पण तो कर दिया है, जो कुछ भी वो कृष्ण का ही है, उनका कुछ नहीं है, सब कृष्ण की सेवा, तन मन वचन धन
वो तो हो ही गया, इसलिए इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं। ओके, और कोई बताएंगे? कलावती मत जी, आत्मनिवेदन शरणागति क्या अंतर है?
प्रभु जी, आत्मनिवेदन मतलब चीजों को जो भी हम समझते हैं, अपना शरीर, अपना सामान, जो भी हम अधिकारी बनते हैं जिसके, उसको हम अपना मान के भगवान को निवेदन कर देते हैं। और शरणागति में सब कुछ भगवान का मानते हुए पूरी तरह से भगवान की शरण स्वीकार करते हैं, उनको अपना आश्रय दाता स्वीकार करते हैं, उनको परम स्वीकार करते हैं और अपने आप को भी उनका ही मानते हैं।
बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद।
ये राधाचरण प्रभु जी, ये राधाचरण प्रभु जी ने सिखाया हुआ है, उन्होंने इसके ऊपर 3-4 बार काफी क्लासेस ली थी इसीलिए।
बाकी लोग क्या कर रहे थे? बाकी लोग नहीं थे उस क्लास में? तो थैंक यू। तो आत्मनिवेदन और शरणागति दो इसलिए अलग अलग हैं, थोड़ा सा अंतर है, कभी कभी तो हम लोग एक ही शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं हर जगह, कहीं पे आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन दुआ पदे करी, और कभी कभी शरणागति, षडंग शरणागति हई बेजहार आहार प्रार्थना चुने श्री नंदा कुमार। तो ये कभी कभी शब्द हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है आत्मनिवेदन और शरणागति में। क्या अंतर है? आत्मनिवेदन मतलब आत्मा को निवेदन या भगवान को समर्पण करना, उसको आत्मनिवेदन कहते हैं। आत्मा का अर्थ हो सकता है शरीर, शरीर की जो आसक्ति, मन इत्यादि, तो ये आत्मनिवेदन कहलाता है कि हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं। और शरणागति क्या है? शरणागति में हम कुछ समर्पण नहीं करते भगवान को, क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि सब कुछ है ही भगवान का, मैं भी भगवान का हूं, उनकी ही संपत्ति हूं, तो इसीलिए ये थोड़ा सा निकट का संबंध, तो शरणागति ये निकट का माना जाता है कि मैं आपका ही हूं, तो समर्पण क्या करें आप? तो शरणागति में भाव क्या है कि मैं सारा कुछ समर्पण कर रहा हूं आत्मनिवेदन में, और शरणागति में क्या भाव है? मैं आपका ही हूं। तो इस दृष्टि से ये अंतर होता है। धन्यवाद कलावती माता जी, बहुत अच्छा। यस, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो प्रश्नोत्तर थोड़े समय बाद में लें, या एक 5 मिनट और बस रुक जाइए, फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। जिनके भी हाथ इन्होंने ऊपर किए हुए हैं थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं तो फिर प्रश्नोत्तर शुरू हो जाएंगे, आगे की चर्चा नहीं हो पाएगी, इस अध्याय को समाप्त कर। ओके, सो ये था आत्मनिवेदन, तो उनका यहाँ पर वर्णन हुआ है, भागवत में किया गया है कि जो व्यक्ति सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ देता है इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है, ये आत्मनिवेदन के कई वर्णन है। फिर अगला है प्रिय वस्तु अर्पित करना, भगवान को प्रिय वस्तु अर्पित करनी चाहिए, किसकी प्रिय? हमें जो प्रिय है वो, या कृष्ण को जो प्रिय है वो? ये वर्णन है कि प्रिय वस्तु अर्पण करनी चाहिए, तो आप बताइए कि किसकी? हमें जो प्रिय हम वो अर्पण करें, या कृष्ण को जो प्रिय है वो अर्पण किया जाए? इसमें ज्यादा चर्चा नहीं है, एक ही श्लोक लिखा है, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है उसे नित्य लाभ मिलेगा। बताइए कि कृष्ण को क्या अर्पण करना चाहिए? अभी रुकिए, किसी को पूछते हैं कि अपनी सबसे अपनी प्रिय वस्तु या जो भगवान को प्रिय है वो। जयति राधा माता जी, आप बताइए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी दोनों दोनों करना चाहिए, जो भगवान को प्रिय है वो भी, और जो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हमारा मन करता है हमें अच्छा लगता है वो भगवान को भी दे।
So, दो यहाँ पर इसका दोनों का अर्थ है। सबसे अच्छा जो भी हमारे पास है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ चीज हो वो भगवान को देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो गाड़ी खराब हो गई, घर में धक्का लगाने के लिए कोई नहीं है तो मंदिर में दे दो, वहां पर वैसे ब्रह्मचारी खाली बैठे होंगे धक्का लगा कर स्टार्ट कर। तो जो देना है भगवान को सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, अपने पास भक्त का क्या भाव होना चाहिए कि अपने पास नहीं है कोई बात नहीं, भगवान के पास होना चाहिए, उनको कमी नहीं होनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ उत्पन्न प्रदान करें। धन भी देना है तो सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो अपने लिए सर्वश्रेष्ठ रखकर फिर वो, जैसे वो है ना धन देने का कि पूर्व काल में है लोग एक बहुत बड़ा सर्कल बनाकर पैसा ऊपर फेंक देते थे जितना भी था उनके पास धन, तो जो सर्कल में अंदर गिरा वो भगवान का और जो बाहर गिरा वो मेरा थोड़ा बहुत। फिर समय हम लोग प्रगति कर गए तो प्रगति कर गए तो एक लाइन बनाया करते थे तो फिर पैसा फेंकते थे ऊपर, तो लाइन के उस तरफ जो गिरा वो भगवान का, इस तरफ जो गिरा मेरा। फिर और प्रगति हो गई हमारी, हम लोग अब एकदम एडवांस हो गए हैं, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग पैसा ऊपर फेंकते हैं, जो ऊपर रह गया वो भगवान का और जो नीचे आया वो मेरा। इस तरह से ये भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए, आजकल का समय ये है। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ चीज जो भी हमारे पास है वो भगवान को अर्पण करें, चाहे भोग लगा रहे हैं, चाहे दान दे रहे हैं, चाहे मंदिर बना रहे हैं। मंदिर भी सर्वश्रेष्ठ बनाया जाता है, देखिए प्रभुपाद ने मंदिर बनाए कितने बड़े बड़े मंदिर, और ऐसा नहीं कि भगवान के लिए कोई कमी हो। हमारे तो 2-3 साल पहले या 4 साल पहले राधाराज बिहारी जी की ड्रेस बनी थी जन्माष्टमी की, इंडिया के बेस्ट डिजाइनर ने डिजाइन की थी। तो जब हमने पहले सुना तो हमें लगा कि ये क्या है, डिजाइनर डिजाइनर ला रहे हैं भगवान की ड्रेस के लिए। फिर हमने कहा क्यों नहीं, जब मूर्ख लोग डिजाइनिंग करा के पहन लेते हैं तो भगवान क्यों नहीं पहने, भगवान का भी डिजाइनर ड्रेस होना चाहिए। और वो बहुत महंगी भी थी, सुना कुछ 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए की ड्रेस। ठीक है, भगवान को देना चाहिए सर्वश्रेष्ठ। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अपने लिए अच्छे कपड़े लाएं और भगवान के लिए अरे इतना खर्चा मत करो, बड़े कम में बनाओ। हाँ, व्यर्थ नहीं करना चाहिए लेकिन कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो भगवान को प्रिय वस्तु अर्पण करना, कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। बस 2 मिनट और है फिर रुकेंगे आपके प्रश्न पर, प्रश्न के कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। शास्त्रों में बताए गए जितने भी कार्य हैं उनको हम लोग यहाँ वर्णन है कि व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए शास्त्रों द्वारा बताए गए तथा जीव को उपार्जन के लिए स्वीकृत। भक्त न केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करे अपितु तो कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन के भी कार्य करे, लेकिन वो भी कृष्ण के। उदाहरण दिया है, यदि किसी भक्त के पास कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, संस्थान है, वैसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर दे। आप लोग इस चीज को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन पालन नहीं करते हैं। लेकिन हम कई भक्तों को जानते हैं जिन्होंने भगवान को, जिस मंदिर से वो संबंधित हैं, तो भगवान को अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया हुआ है मंदिर को। तो जो भी उनका प्रॉफिट होता है, जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, तो उन्होंने 3 भाग में बांटा है जो भी प्रॉफिट, एक उनका, एक उनके पार्टनर का और तीसरा भक्त। हैं जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ले ली है, दृढ़ विश्वास है कि आपका मन वचन शरीर आपका है, और वो जो मन वचन शरीर उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्यानंद का आस्वाद। यहाँ ये वर्णन है शरणागति का कि वो आपका है, ये विश्वास है। फिर आगे तुलसी आदि वृक्षों की सेवा करना, तो स्कंद पुराण में तुलसी की प्रशंसा की गई है। तो कहा गया है कि तुलसी वृक्ष को नमस्कार कर, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को नष्ट कर देती है। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। और आजकल तो देख ही रहे हैं कोरोना के विमुक्त होने के लिए तुलसी का बड़ा उपयोग हो रहा है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है वह निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है तुलसी सभी प्रकार से कल्याणमय है, इसके दर्शन स्पर्श स्मरण वंदन प्रणाम श्रवण या इस वृक्ष के लगाने मात्र से कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है में सदैव वैकुंठ लोक में वास करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 अध्याय पूरे हुए हैं और अब 2 दिन का क्लास और बाकी है, शुक्रवार और शनिवार। प्रयास करेंगे जितना हो गया, और फिर जो रह जाएगा वो फिर कभी आगे जीवन में अवसर मिला तो चर्चा कर के। आप में से किसी के कोई प्रश्न? जानवी प्रिय मात जी, आप कुछ पूछना चाहते थे, हमने उस समय कहा था बाद में पूछिए, ये प्रश्न है आपका।
जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, 2 प्रश्न है। जैसे आपने कहा कि भगवान जो है वो सत्व परंपरा में जो हमारा सतीत्व है उसको पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है, इसीलिए भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्त। तो हम देखते हैं कि इस्कॉन में कई बार अलग अलग जो प्रामाणिक संप्रदाय है उनके लोग भी आते हैं, जैसे पुष्टि मार्ग वाले हैं, क्योंकि वहां पे जो सेटअप है वो उतना एलोबरेट नहीं है जितना इस्कॉन में है। तो क्या भगवान को ये पसंद नहीं आएगा कि दूसरे मार्गों वाले जो ऑथेंटिक संप्रदाय है वो भी अपने संप्रदाय को छोड़ के कई बार हम देखते हैं कि गौड़ीय संप्रदाय में शरण लेते हैं, तो क्या ये ऑथेंटिक मतलब भगवान को अच्छा नहीं लगेगा?
अगर उनको वहां पर वो पोषण नहीं मिल रहा, या अगर उस संप्रदाय में सही तरीके से ज्ञान को नहीं दिया जा रहा और भक्त के हृदय में बड़ी तीव्रता से ज्ञान को ग्रहण करने की इच्छा है और वो सतीत्व के भाव को नहीं छोड़ता, लेकिन केवल इस भावना से कि क्योंकि यहाँ पर अगर वो प्राप्त नहीं हो रही है कुछ चीजें जो होनी चाहिए, जो उनके संप्रदाय में है, अर्थात उनके संप्रदाय में कमी नहीं है, लेकिन उस चीज को प्रदान नहीं किया जा रहा। जैसे होता है थोड़े समय बाद संप्रदाय में जो ज्ञान है उसको देते नहीं है, फिर वो कुछ धन कमाने का या केवल कुछ और मार्ग बन जाता है। तो उस अवस्था में संप्रदाय की निंदा ना करते हुए और ये जानते हुए कि संप्रदाय में सब ठीक है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नहीं दिया जा रहा इसीलिए मुझे अन्य स्थान पर अगर वो मिल रहा है तो फिर उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन वहां भी भक्त को अपने संप्रदाय की निंदा नहीं करनी चाहिए, सतीत्व का भाव तब भी बना रहना चाहिए।
थैंक यू जी प्रभु जी। और आपने जैसे कहा कि हमें दूसरे संप्रदायों में इसलिए भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से हम भ्रमित हो जाते हैं, तो प्रभु जी हम इस्कॉन में भी देखते हैं कि मतलब मे बी दिस इज लिटिल डायरेक्ट क्वेश्चन, पर क्योंकि आप टीचर हैं हमारे, जो मेरे मन में है वो मैं बोलना चाहती हूँ कि हम अलग अलग गुरुओं का अलग अलग भाव देखते हैं। मतलब कई बार किसी का किसी विशेष चीज पे एम्फेसिस होता है, किसी का किसी विशेष चीज पे एम्फेसिस होता है, और कई बार ये ओपिनियंस आपस में टकराते भी हैं, पर क्योंकि हम एक संस्था हैं तो ऐसे में हमें इसको किस तरह से समझना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक ही संस्था है, तो हमें इस चीज को कैसे रिजोल्व करना चाहिए?
यस, एक ही संस्था में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, तो सबसे पहली चीज हमारे लिए यूनिफाइंग फोर्स है श्रील प्रभुपाद, तो हमारे लिए एक सांत्वना है, एक चीज है कि ठीक है हमारे सबके हैं ओपिनियन डिफरेंस है, एक ही संस्था में हम जाएं कहां, प्रभुपाद हैं यूनिफाइंग फोर्स के पास जा सकते हैं, लेकिन हाँ प्रभुपाद के भी कई बार एक ही विषय के कई अलग अलग वक्तव्य मिल जाते हैं, प्रभुपाद ने ये कहा और प्रभुपाद ने ये कहा। जैसे दीक्षा का विषय है तो प्रथम दीक्षा महत्वपूर्ण है या द्वितीय दीक्षा महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण दीक्षा, इसके विषय में प्रभुपाद के वक्तव्य है, जहाँ एक जगह प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट दीक्षा इज द रियल दीक्षा, जहाँ दूसरी जगह कहते हैं कि एक्चुअली सेकंड ब्राह्मण इनिशिएशन इज द रियल इनिशिएशन। तो फिर अब हम लोग को जो है ये क्या हो गया, हम तो सोच रहे थे प्रभुपाद यूनिफाइंग फोर्स है, तो खैर ये हो सकता है प्रभुपाद ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कारणों से जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण है कि प्रभुपाद ने जब जप करने के लिए कहा तो प्रभुपाद ने कहा नियोफाइट डिवोटी कैन चैंट अप टू 16 राउंड्स, फिर उन्होंने कहा कि एन इनिशिएटेड डिवोटी शुड चैंट मिनिमम 16 राउंड्स। तो ये लगता है कि दोनों तो सेम वाक्य, दोनों सेम वाक्य नहीं है, नए लोगों के लिए कहा जो अभी तक गंभीर नहीं कि अप टू 16 राउंड, चलो कम भी करे लेकिन आना चाहिए उनको अप टू 16, लेकिन दीक्षित भक्तों के लिए कहा मिनिमम 16 राउंड, तो उनको नहीं सोचना चाहिए 16 हो गया माला तांगती, ऐसे प्रभुपाद के वक्तव्यों को हम समझे नहीं है, कोई भेद नहीं है उनके वक्तव्य समझे नहीं, तो इसीलिए जो हमारी इस्कॉन संस्था में अधिकारी गण है हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी वो लोग आपस में चिंतन मनन करके हमें प्रस्तुत करें हम उसको फॉलो करें, अपना ज्यादा उसमें प्रयास ना करें, क्योंकि जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे जो वरिष्ठ भक्तजन है वही सब बैठ कर कोई निर्णय ले रहे हैं, इस कारण से लिया होगा, हमें पसंद नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि निर्णय सही नहीं, तो उसके लिए विचार। और दूसरा चीज, कभी अगर नहीं समझ में आता है तो इस संस्था में ये भी तो व्यवस्था है कि आप उसको विरोध करके या उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी आपने इतना स्पष्ट पूछा है तो कुछ स्पष्ट से कह देते हैं कि अभी इस्कॉन में एक इश्यू चल रहा है, जीबीसी ने एक निर्णय लिया, भारत के लोगों को, भारत के किसी भी नेता को, अधिकारियों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने विरोध किया, फिर अभी मीटिंग हो रही है जीबीसी की और भारत के जितने भी भक्त हैं उनकी मीटिंग हो रही है। तो ये वैष्णव पद्धति है, मतभेद होना या मतभेद बिल्कुल नहीं होना ये तो हो ही नहीं सकता संस्था में, क्या घर में मतभेद होते हैं, आपके घर में चार लोग हैं मतभेद नहीं होते हैं, फिर संस्था इतनी बड़ी है मतभेद हो, लेकिन उसको वैष्णव पद्धति से सॉल्व करना ये महत्वपूर्ण है। तो अगर हमारे इस्कॉन में हमें आए भी ऐसे तो हमें जो वैष्णव पद्धति है प्रभुपाद का जो आदेश है उसको पालन करके उसके आधार पर हमें सॉल्व करना चाहिए।
और प्रभु जी अगर हियरिंग का अगर हम कहें तो क्या कुछ ऐसा नियम है या कुछ ऐसा सिस्टम है कि हमें अपने गुरु के बारे में या अपने गुरु के लेक्चर्स को ज्यादा सुनना चाहिए, क्या कुछ ऐसा कुछ आपका विचार, मतलब मैं जानना चाहती थी इस विषय।
शिला प्रभुपाद ने लिखा है एक स्थान पर, गुरु स्वीकार करने से पहले गुरु से कम एक बार श्रवण करना चाहिए, एक साल तक श्रवण करना चाहिए। उसका कारण ये है कि गुरु के भाव को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि गुरु आपसे हर बार तो व्यक्तिगत रूप से आकर आपको कुछ गाइडेंस नहीं देंगे, तो गुरु से तो उसके प्रवचनों के द्वारा। सो एक दृष्टि से इस्कॉन में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें गुरु से ही सुनना है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से ये अनिवार्य है कि हम गुरु से अधिकाधिक सुने जिनको हमने जीवन समर्पण किया है। गुरु का अर्थ है हमने जीवन समर्पण कर दिया, और अगर समझिए हम उनका सुनते ही नहीं है और हम अन्यों की सुनते रहते हैं तो गुरु का जो भाव है या गुरु के प्रति जो प्रेम है उसमें कमी आ सकती है। हम गुरु से कैसे प्रेम उत्पन्न करते हैं, बार बार उनसे सुन, देखिए सुनना एक संबंध स्थापित करता है। जैसे दो साल पहले हम आपने से किसी को नहीं जानते, नाम तक नहीं पता थे हमें आप सबके, आपका अस्तित्व है ये भी नहीं पता था हमें कि आप रहते हो सूरत में। अब थोड़ा सा हम आए, थोड़ा श्रवण हुआ, हमने कुछ कहा, आप लोगों ने सुना, एक संबंध स्थापित, क्योंकि जब पहली बार हमने आप लोगों को प्रवचन दिया था तो हम केवल चेहरे देख रहे थे, हमें नहीं पता था कौन क्या है, हम तो चेहरे चेहरा वो दिखाई दे रहा था हमें जब बैठ के प्रवचन देने के, हमें क्या पता कौन क्या है। लेकिन अब जब हम प्रवचन देते हैं, राधा चरण प्रभु है, जानकी प्रिय मान जी है, गौरांग प्रिय प्रभु, तो अब संबंध, तो श्रवण से संबंध बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, तो इसीलिए गुरु से सुनना चाहिए। लेकिन केवल गुरु से सुनना चाहिए ये नहीं, क्योंकि हमारे लिए आवश्यक क्या है, प्रभुपाद का सुनना आवश्यक है ताकि हम उनके आंदोलन मूड और मिशन को हमेशा याद रखें, और वो हमारे गुरु को भी प्रसन्न करता है क्योंकि वो सब उनके शिष्य हैं। तो आप अगर उनका सुनते हो तो वो तो आपको और आशीर्वाद देंगे, बहुत अच्छा है। तो पहली चीज प्रभुपाद का नियमित तौर से हमें सुनना चाहिए, दूसरी चीज गुरु से भी श्रवण करना चाहिए, लेकिन तीसरी चीज केवल गुरु से श्रवण नहीं करना। ऐसा नहीं है कि नियम नहीं है कि केवल गुरु से, क्यों, क्योंकि बाकी अन्यों को जो प्रभुपाद ने कृपा की है, जैसे आपने खुद बताया कि एक गुरु का एक भाव होता है, एम्फसाइज करते हैं किसी भाव पर, कोई कीर्तन पर ध्यान देते हैं, कोई फिलॉसफी पर ध्यान देते हैं, कोई भक्तों के आचरण पर ध्यान देते हैं, बहुत सारे ये सारी चीजें प्रभुपाद ने सिखाई है उन लोगों को। तो अलग अलग जिसको प्रभुपाद ने देखा ये उसमें अच्छा है उनको कह दिया, उन्होंने वो चीज ले ली, तो अगर हम केवल एक ही से सुनते हैं तो अन्य जो प्रभुपाद के आंदोलन के एलिमेंट्स हैं या आंदोलन के अंग हैं उनको हम नहीं समझ पाए। और तीसरी चौथी चीज, हम एक संस्था के रूप में नहीं रह पाएंगे। फिर कल को क्या होगा, जैसे हुआ है ये इस्कॉन में, कि कल को क्या होगा, गुरु का किसी कारण से इस्कॉन से मतभेद हो गया और गुरु ने छोड़ दिया और हम लोग भी छोड़ कर चले उनके साथ। क्यों? तो एक गुरु ने कह दिया, क्योंकि हम तो केवल गुरु को जानते, हम तो अन्य को जानते ही। तो इस्कॉन एक ऐसी संस्था प्रभुपाद ने बनाई कि जिसमें हर भक्त किसी का भी चाहे गुरु क्यों ना हो, अगर वो इस भाव में रहे कि गुरु ये तो केवल हमें प्रभुपाद की शिक्षाओं को देने के लिए है और गुरु निश्चित हमें हमारा उद्धार करने के लिए है, लेकिन साथ साथ ये संस्था भी बड़ी महत्वपूर्ण है। संस्था है तो गुरु है, या गुरुजन है तो संस्था है, ये दोनों चीज है, ये देखना चाहिए। अगर सारे गुरुजन अलग हो जाएं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद हुआ, तो फिर संस्था नहीं रही, कहां गौड़ीय मठ है, वे सब अलग अलग हो गए। लेकिन वो एक रहे तो इस्कॉन है, और अगर इस्कॉन है तो वो है ये भी जानना चाहिए, तो उनका अस्तित्व नहीं। इस दृष्टि से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि निश्चित प्रभुपाद से नियमित सुने, गुरु से भी सुने, लेकिन अन्यों से भी श्रवण करें, ताकि हमें इस्कॉन के अलग अलग एस्पेक्ट्स का भी अनुभव हो, साथ साथ एक संस्था का, एक परिवार का अनुभव हो कि हम अलग हैं वो अलग हैं, क्योंकि इससे तो बहुत बट जाएगा इस्कॉन, और ये बहुत बड़ा खतरा है इस्कॉन के लिए, दल बनाना, ग्रुप बनाना गुरु के आधार पर और अपने ही गुरु को श्रेष्ठ प्रस्तुत करना। देखिए, व्यक्तिगत तौर से हमारे हृदय में ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे गुरु को श्रेष्ठ है, निश्चित होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये सोचे कि जो उनके गुरु हैं वो इतने श्रेष्ठ नहीं है जितने हमारे, ये बहुत गलत भावना। तो इस भावना में रहकर अगर हम इस्कॉन हैं तो इस्कॉन कभी टूटेगा नहीं, हमें पोषण मिलता रहेगा। देखिए, इस्कॉन संस्था कैसे पोषण देती है, गुरु के चले जाने के बाद भी भक्तों को कोई तकलीफ नहीं होती है, ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, संस्था का बैकअप नहीं होता, तो क्या होता, अगर गुरु संस्था छोड़कर चले गए, हम नहीं जाना चाहते हैं तो हम इस्कॉन में हैं, कौन हमें आश्रय दे, या गुरु देह छोड़ देते हैं चले जाते हैं भगवत धाम वापस, तो फिर हमारा क्या स्थिति है, फिर हम आपस में झगड़ेंगे, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद हुआ, तो फिर हम आपस में लड़ मरेंगे कि हाँ। देखिए, आज भी ऐसा नहीं है कि गुरु के शिष्यों में भेद नहीं है, झगड़े नहीं है, बहुत हैं, लेकिन गुरु होते हैं तो थोड़ा यूनिफाइंग रहता है कि अरे नहीं, गुरु महाराज ने कह दिया, ठीक है रहने दो, नहीं करेंगे, और गुरु के जाने के बाद फिर तो तलवारें निकलेंगी तो कुछ होना ही नहीं है। इसीलिए संस्था वो बैकअप प्रोवाइड करती है कि देखिए, आज के कई ऐसे गुरु जन चारु महाराज हैं, कमाल कृष्ण महाराज हैं, अन्य कई श्रीधर महाराज, कई ऐसे गुरुजन जो अब नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनके शिष्यों को कोई ऐसी भावना नहीं हुई कि अब हम कहां जाएं। तो ये संस्था का लाभ, ठीक है।
थैंक यू प्रभु,
सॉरी थोड़ा ज्यादा बोल दिया हो तो क्षमा कीजिए।
थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, इट इज क्लियर नाउ, थैंक यू सो मच।
और कौन है, किसी के प्रश्न, कुछ समय भी बहुत हो गया, 9:30 हो गए हैं, तो प्रयास करते हैं समय पर रुकने का। एक प्रश्न के लिए एक हाथ दिखाई दे रहा है,
मुझे योग ने प्रभु का हाथ काफी जोर से उठा हुआ है, योग ने।
हाँ जी, माता जी बोलिए।
प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी आपने आत्मनिवेदन और प्रभु जी शरणागति के बारे में बताया, तो इन दोनों में बेस्ट क्या है? जैसे हम देखते हैं कि आत्मनिवेदन में आत्मा मन शरीर सब कुछ दे दिया, तो इसका मतलब उनके अंदर ममत्व का भाव है, और शरणागति में वो सोचते हैं कि वो सब कुछ भगवान का है, तो ममत्व का भाव नहीं है, तो अच्छा कौन सा है, शरणागति या आत्मनिवेदन?
आप बताइए, अभी आपने दोनों चीजें कही, दोनों में कौन सा अच्छा?
नहीं प्रभु जी, आप क्लियर कीजिए।
आपने कहा कि शरणागति में ममत्व का भाव है आत्मनिवेदन में, और शरणागति में नहीं है। दरअसल शरणागति को बहुत निकट माना जाता है भगवान के, क्योंकि उसमें ये भाव नहीं है कि मैं कुछ करूं, तो भाव है कि है ही सब आपका, मैं कर क्या रहा, मैं भी आपका हूँ, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा निकट माना जाए। श्रेष्ठता की बात नहीं है, लेकिन भगवान से निकटता की बात, उसमें भक्त भगवान से निकटता का अनुभव करता है शरणागति। ठीक है, ये आपका प्रश्न स्पष्ट है तो स्पष्ट उत्तर शरणागति बेस्ट।
थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी।
हरे कृष्ण। वैसे शरणागति के 6 लक्षण हमने सोचा था वर्णन करेंगे, लेकिन समय बिल्कुल नहीं हुआ। आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन भी लिखा है उन शरणागति के 6 लक्षणों पर। दैन्य आत्म निवेदन गोपतृप्ते भराना अवश्य राखी बे कृष्ण विश्वास पाला। तो ऐसे आप लोग 6 अंगों को भी पढ़ लीजिए। ठीक है, हम आपको विस्तार में नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप सब ये पढ़ चुके हैं, ये रिपीट है, इसीलिए नहीं तो बहुत विस्तार में इसकी चर्चा होती इन अंगों की, और सब आप कर चुके हैं तो इसलिए बात होता है। ठीक है, सो कल आप सबसे भेंट होगी। कल और परसों बस 2 दिन है ये क्लास, जितना हम लोग जा पाएंगे जाएंगे, नहीं तो और कभी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभारी हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और आप सबको आशा है कुछ संशय दूर हुए होंगे। दरअसल भक्ति रसामृत सिंधु का उद्देश्य यही है। भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? रूप गोस्वामी ने दिया है कि हम कैसे भक्ति करें और भक्ति में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको कैसे दूर करें, संशय कैसे दूर करें। तो इसीलिए छोटी छोटी चीजों को भी दूर करना जरूरी है। तो हमें अच्छा लगा आप सबके जो कल जिज्ञासाएं थी, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, तब भक्ति रसामृत सिंधु का उपयोग होगा। ये प्रैक्टिकली भी हम लोग सब चीजें सीख लें जो हम लोग भक्ति में करते हैं। इसलिए बहुत, जैसे हम लोग देखेंगे कई सरल चीजें दी गई, हम लोग लगता भक्ति रसामृत सिंधु बहुत कठिन ग्रंथ है, समझ नहीं आएगा, पता नहीं क्या क्या दिया है रूप गोस्वामी ने। कितना सरल है, चरणामृत पीना है, प्रसाद लेना है, भगवान की सेवा करनी है, यही सब दिया है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इसको तो सबसे पहले पढ़ाना चाहिए भक्ति शास्त्र, अगली बार से ऐसा करेंगे जहां भी पढ़ाएंगे पहले इसको पढ़ाएंगे। सबसे सरल है, लोगों को अच्छा लगेगा कि अरे ये तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उसको ठीक तरह से और करने के लिए ये ग्रंथ है। तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी प्रसाद ग्रहण करने की, जहां पर अंत हुआ था ये 9वें अध्याय में, और 1-2 और अंग इसमें हैं। फिर हम लोग आगे 10वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो अब इसमें हम लोग, अगला था चरणामृत का पान करना। तो चरणामृत का पान करना चाहिए, यहाँ पुराणों से, पद्म पुराण से लिखा गया है कि जिस व्यक्ति ने कभी दान नहीं दिया, यज्ञ नहीं किया, वेदों का अध्ययन नहीं किया, ईश्वर की पूजा नहीं की, अर्थात कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, अगर मंदिर में रखे चरणामृत का पान कर लेता है तो भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। चरणामृत में बहुत शक्ति होती है, तो इसीलिए चरणामृत रोज ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत मतलब जब भगवान का अभिषेक किया जाता है सुगंधित जल से, पुष्पों से, जब भगवान का अभिषेक हो जाए तो उस जल को चरणामृत कहते हैं, उसको ग्रहण करना चाहिए। भगवान का रोज अभिषेक होना चाहिए, इसका अर्थ ये है, तभी तो चरणामृत होगा, नहीं तो चरणामृत कहाँ से होगा। तो इसलिए आप सबको घर में प्रयास करना चाहिए, और नहीं होता है तो जितने समय भी करते हैं उस दिन चरणामृत ले लेना चाहिए। ज्यादातर हम लोग देखते हैं बाहर के जगत में भी, जो भक्ति में नहीं भी है वो भी, और कई कई मंदिरों में भी देखा जाता है कि चरणामृत लेते समय वो एक श्लोक को कहते हैं। आप सबको ये श्लोक बड़ी अच्छी तरह से पता होगा, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयामहम। ये आप लोगों ने सुना है ये श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। तो ये जनरली जब चरणामृत लेते हैं विष्णु पादोदकम।